आहान एक्सीडेंट के बाद अपनी याददाश्त भूल चुका था। उसे याद थे तो कुछ गिने चुने नाम और अपनी थोड़ी बहुत यादें। देखा जाए तो आहान को जो भी याद था उनमें ज्यादातर हिस्सा चाहत से जुड़ा हुआ ही था। उसे बस ये याद था कि चाहत को वो डॉल कहकर बुलाता था और उसे गुस्सा करने की भयंकर बीमारी थी जो उसकी डॉल ही ठीक कर सकती थी। चाहत की अचानक शादी से जाने के बाद अक्षरा ने आहान की जिंदगी में उसकी डॉल की जगह ले ली थी। आहान को तो ये तक याद नहीं था कि उसकी डॉल अक्षरा नहीं चाहत थी। अपने केबिन में आहान तनु के साथ बैठा हुआ था और इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने अपना गुस्सा शांत करने के लिए अक्षरा को ऑफिस में बुलाया था। तनु उसे डायरेक्टली कुछ नहीं बता सकती थी पर वो उसे हिंट देने की पूरी कोशिश कर रही थी कि अक्षरा उसकी डॉल नहीं है। अक्षरा के आते ही तनु को वहां से जाना पड़ा। तनु के बाहर जाते ही अक्षरा ने केबिन का डोर लॉक किया और आहान के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। वो मुस्कुराते हुए आहान की आंखों में देखते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं आ रहा तुम्हें आजकल? अक्षरा की बात सुनकर अचानक आहान के चेहरे के भाव सर्द हो गए। वो कोल्ड वॉइस में बोला, क्या हो गया है डॉल? तुम मुझे तुम कहकर बुला रही हो? इतनी बदली हुई क्यों लग रही हो? मेरे एक्सीडेंट के बाद से तुम मेरे पास भी कम आती हो। पिछले 7 महीने से हम दूर हैं। डर लगता है तुम्हें मेरी करीबी से? आहान का कहना भी सही था। अक्षरा को आहान के पास आने से फिलहाल के लिए डर ही लग रहा था कि कहीं आहान को सब याद आ गया तो वो एक पल में उसे खुद से दूर कर देगा। अक्षरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं आहान, वो बस मैं आपका टेस्ट ले रही थी कि कहीं फिर से आप मुझे भूल तो नहीं गए हैं। अक्षरा चाहत की तरह काफी सॉफ्टली बात कर रही थी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? फिर से भूलने का क्या मतलब है डॉल? मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं था। डॉल, आई वॉन्ट यू लाइक बिफोर। आहान ने अक्षरा के गाल पर अपनी नोज रब करते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर अक्षरा की सांसें तेज हो रही थीं। वो खुद को कंट्रोल करके बोली, अभी नहीं आहान, याद है हमारी शादी होने वाली थी और आपके एक्सीडेंट की वजह से सब बीच में रह गया। शादी करते हैं आहान, जब हमारे रिश्ते को कोई नाम मिल जाएगा तभी हम करीब भी आ जाएंगे। अक्षरा जानती थी कि चाहत आहान की जिंदगी में वापस नहीं आएगी, फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और जल्द से जल्द आहान से शादी करना चाहती थी। आहान के होश में आने के बाद से ही उसने उसे शादी के लिए मनाना शुरू कर दिया था, पर आहान उसे हर बार मना कर देता था। अक्षरा की बातें सुनकर आहान उससे दूर हो गया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे रेजिस्ट कर रही हो डॉल? कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे सब कुछ मैं नहीं तुम भूल गई हो। हमारे बीच तो कभी कोई दूरी थी ही नहीं, और तुम कब मुझसे शादी करने के लिए इतना इंटरेस्टेड होने लगी? मॉम की वजह से तो मुझसे शादी करना चाहती थी, जबकि मॉम तो अब प्रेशर भी नहीं डाल रही है। उसका बर्ताव देखकर अक्षरा को डर लग रहा था। वो बीमार जरूर था लेकिन आहान ओबेरॉय क्या कर सकता है, ये अक्षरा से कहाँ छुपा हुआ था। अक्षरा ने जल्दी से आहान को पानी का ग्लास दिया और कहा, आप पानी पीकर अपने गुस्से को शांत कीजिए। वो तनु कहाँ है? मैं उसे लेकर आती हूँ, वो आपको कुछ मेडिसिन दे देगी। अक्षरा जैसे ही आहान को पानी का ग्लास पकड़ाने को हुई, आहान ने उसे छोड़ दिया। वो उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, कौन हो तुम? तो मेरी डॉल नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी डॉल अच्छे से जानती है कि मुझे गुस्सा आने पर उसे क्या करना था जिससे मैं रिलैक्स हो जाऊं। आहान की बातें सुनकर अक्षरा के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने मन ही मन कहा, पता नहीं वो चाहत भी कहाँ जाकर मर गई। मैंने उसे लंदन जाने को बोला था और वो न जाने दुनिया के कौन से कोने में छुपा कर बैठ गई जो अब तक नहीं मिल रही है। कॉन्टैक्ट में होती तो कम से कम उससे पूछ लेते कि आहान के गुस्से को कैसे शांत करना है। कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर इसी तरह इसके सामने रही तो ये पक्का मुझे पकड़ लेगा। अक्षरा को चुप देखकर आहान अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। इससे पहले कि आहान अक्षरा के करीब आता वो जल्दी से बोली, मैं तनु को बुलाकर लेकर आती हूँ, वो बाहर ही होगी। अक्षरा जल्दी से आहान के केबिन से बाहर निकल गई। किस्मत से उसे तनु वहीं पर मिल गई। वो जल्दी से तनु के पास जाकर बोली, मुझे बताओ वो लड़की आहान का गुस्सा शांत करने के लिए क्या करती थी? मुझे उसकी और आहान के रिश्ते के बारे में हर एक बात जाननी है। ओह रियली? ये बात तो उसकी डॉल बनने से पहले सोचना चाहिए था ना कि वो तुम्हें पकड़ लेगा। वैसे मैं एनी टाइम उनके बेडरूम में उनके पास नहीं रहती थी जो तुम्हें हर एक मोमेंट की खबर दे सकूं। तनु ने पूरे एटीट्यूड से जवाब दिया। अक्षरा जिस तरह से वहां दौड़कर आई थी उससे तनु समझ गई थी कि आहान का गुस्सा वो शांत नहीं कर पाई है। तनु ने अक्षरा को साइड में किया और फिर उनके केबिन में चली गई। उसने आहान को इंजेक्शन और कुछ दवाइयां दी ताकि वो सो जाए और अपने गुस्से को भूल जाए। जब आहान केबिन से जुड़े अपने प्राइवेट रूम में सो चुका था तो तनु बाहर आई। अक्षरा अभी तक वहीं पर थी। उसे देखकर तनु ने कहा, सोचो अक्षरा गोयनका, अगर आहान ओबेरॉय की याददाश्त वापस आ जाए तो वो क्या करेगा? फिर ऊपर से उसे ये पता चले कि उसकी डॉल को तुमने गायब किया है तो इस बार तुम्हें किडनैप करने के बजाय डायरेक्ट दूसरी दुनिया में पहुंचा देगा। तनु के चेहरे पर इविल स्माइल थी और अक्षरा के चेहरे पर इरिटेशन। उसे इस तरह परेशान देखकर तनु सीटी बजाते हुए वहां से चली गई। वही अक्षरा अभी तक वहीं पर खड़ी थी और उस दिन के बारे में सोच रही थी जब आहान को होश आए हुए लगभग 2 दिन हो चुके थे। वो बार बार अपनी डॉल के बारे में पूछ रहा था। चाहत दोस्त के वहां ना होने की वजह से सारे घर वाले परेशान थे कि आहान के पास किसको भेजा जाए। ऐसे में उन सबसे छुपकर अक्षरा आहान के पास कमरे में पहुंची। अक्षरा ने खुद को पहले की तरह मेंटेन कर लिया था। आहान ने उसकी तरफ देखा तो वो कुछ देर उसे देखने के बाद धीरे से बोला, क्या तुम मेरी डॉल हो? तुम मेरी डॉल हो ना जो वापस आ गई है? कहाँ थी तुम इतने दिनों तक? आहान की बातों से अक्षरा समझ गई थी कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। उसे अपनी डॉल का नाम तो याद है पर ये नहीं कि वो कैसी दिखती है। अक्षरा ने हाँ में सिर हिलाया और आहान के पास आकर बैठ गई। तुम्हारे लिए परेशान थी तो मंदिर चली गई थी, अब तुम्हारे पास आ गई हूँ ना तो सब ठीक हो जाएगा, अक्षरा ने हल्का मुस्कुराकर कहा। अक्षरा के आने के बाद आहान ने उसे डॉल समझ लिया था और उसका बिहेवियर थोड़ा कंट्रोल में आने लगा था। इस वजह से आयुष और शिवानी ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे अक्षरा ने विजय के साथ मिलकर आहान को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आहान की हल्की फुल्की यादें वापस लौट रही थी। इस वजह से वो कभी आहान पर हावी नहीं हो पाई। ऊपर से उसके गुस्से की आदत भी वापस लौट आई थी। अक्षरा को उसके पास जाने से डर लगता था। एक बार गुस्से में आहान ने अक्षरा के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का सबसे गर्म हिस्सा था, जहां टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास रहता था। सुबह सुबह धूप होने की वजह से लोग एक कैफे के अंदर इकट्ठा थे, जहां का पंजाबी खाना बहुत फेमस था। वैसे भी कनाडा में ज्यादातर लोग पंजाबी ही थे। इस कैफे में एक लड़की हाथ में ट्रे पकड़े हुए कस्टमर्स को उनका ऑर्डर पास कर रही थी। उसने बाकी वेटर्स से अलग कपड़े पहने हुए थे, बस उनका एप्रन सेम था। कमर से लंबे बाल जिसको उसने पिगटेल में बांध रखा था और सिर पर केप लगा रखी थी।
वो काफी धीरे धीरे और सावधानी से चल रही थी। तभी एक पंजाबी औरत उसके पास आई, जो उस रेस्टोरेंट ओनर की पत्नी थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और काफी नरमी से कहा, चाहत पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इस हालत में ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। तुम पहले से ही कमजोर हो, ऊपर से इतना घूमोगी फिरोगी तो फिर से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। बोलते हुए उसकी नज़र चाहत के पेट की तरफ गई। ढीले कपड़े पहनने के बावजूद उसका बेबी बम्प काफी आगे तक निकला हुआ था। ऊपर से चाहत कमजोर भी लग रही थी तो उसका बेबी बम्प एक्स्ट्रा विजिबल हो रहा था। वो लगभग 8 महीने प्रेग्नेंट थी। चाहत ने उसे देखकर फीकी मुस्कुराहट दी और फिर धीरे से कहा, आप पहले से ही मेरे ऊपर बहुत एहसान कर रही हैं सिमी आंटी, प्लीज़ मुझे कुछ काम कर लेने दीजिए, वरना मुझे ऐसे लगेगा कि मैं आपके ऊपर बोझ बन रही हूँ। उसके ऐसा कहने पर सिम्मी, जो उसे रेस्टोरेंट की ओनर थी, उसने चाहत की तरफ घूर कर देखा और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहा, तुझे कितनी बार कहा हुआ है कि ऐसी बातें मत किया कर, तू है ना हमारी जिंदगी में रोशनी बनकर आई है चाहत, वाहेगुरु जी ने हमें औलाद से नहीं नवाजा, तूने हमारी जिंदगी में औलाद की उस कमी को पूरा किया है बेटा, और अब तो मैं नानी भी बनने वाली हूँ। सिम्मी ने मुस्कुराते हुए चाहत के पेट पर प्यार से हाथ रखा। चाहत ने उनकी बात पर हामी भरी। उसने धीरे से कहा, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, ये ऑर्डर दे आऊं वरना ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर चाहत दूसरी तरफ पलट गई। उसकी आंखें नम हो रही थीं पर वो सिम्मी आंटी के सामने रोना नहीं चाहती थीं। चाहत ने कस्टमर को उनका ऑर्डर दिया और बाहर आकर बैठ गई। चाहत ने अपने पेट पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैंने वहां से भागकर सही किया? मुझे नहीं पता था मैं अकेली ही आहान से दूर नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ उनका बच्चा भी होगा। इस मासूम की तो कोई गलती नहीं है, मैं तो यहाँ खुद को भी नहीं संभाल पाती थी और अब मेरे साथ एक और चांद जुड़ गई। सोचते हुए चाहत की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। चाहत ने अपने आंसू साफ किए और अंदर की तरफ देखा तो सिम्मी आंटी ने उसे इशारे से मुस्कुराने से कहा। चाहत उन्हें देखकर मुस्कुराई और फिर वापस दूसरी तरफ पलटकर बोली, आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं आहान? क्या वो लड़की सच में कह रही थी आपने मेरी मम्मा को मारा है? जो भी हो, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है, उसे वो सब देना है जो मुझे नहीं मिला। चाहत का दिल अभी भी मानने को नहीं कर रहा था कि अक्षरा उस रात सच बोल रही थी। वो जी रही थी सिर्फ और सिर्फ अपने और आहान के बच्चे के लिए।